सो मुकेश भाई हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं आपको मुकेश भाई से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। मुकेश भाई अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही राजयोगा मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने बीटेक कंप्यूटर्स में कंप्लीट किया फ्रॉम MNIT जयपुर और एमटेक आपने कंप्लीट किया बिट्स पिलानी से। आपने मास्टर्स डिग्री भी आप होल्ड करते हैं वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एंड MBA इन सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। ही इज करंटली वर्किंग एज डायरेक्टर ट्रेनिंग एट जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। और साथ ही साथ आप ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल फैकल्टी भी हैं और मैनेजमेंट सेशंस मेडिटेशन सेशंस भी आप कराते हैं और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आप अपने लेक्चर्स को डिलीवर करते हैं। सो ब्रदर हमारे साथ हैं, हम इस सत्र की शुरुआत 2 मिनट साइलेंस के साथ करेंगे। इस साइलेंस में हम अपने आप को डीपली चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे होलिस्टिकली मैं कितने अच्छे से रह रही हूं, अपनी लाइफ को लीड कर रही हूं, ये हम अपने आप को चेक करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आज इस प्रोग्राम के दूसरे दिन के मध्यांतर सेशन में आप सबका स्वागत है और ये सेशन करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, कराने के लिए तो फिर भी इतनी नहीं चाहिए। आप देखो बहुत थोड़े लोगों ने हिम्मत की है सेशन तक पहुंचने की, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस सेशन की, और ये सेशन का टॉपिक भी शानदार है, होलिस्टिक वेलबींग। होलिस्टिक वेलबींग मीन्स वेलबींग माने स्वास्थ्य अच्छा, और होलिस्टिक मतलब कंप्लीट, आधा अधूरा स्वास्थ्य नहीं। जब हम होलिस्टिक वेलबींग की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो जनरली पहले शुरू में बात आती है कि चलो अच्छा स्वास्थ्य हमारे पास है, शरीर ठीक से चलता है, तो इसका मतलब वेलबींग है। पर वेलबींग के बहुत सारे और डायमेंशन भी हैं, तो आज हम वेलबींग के 8 डायमेंशंस पे बात करने वाले हैं। और 8 डायमेंशंस पे बात करने के बाद आखिर में ये बात करेंगे कि एक संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति की निशानियां क्या होंगी, कैसे पता लगेगा उसको देख करके कि हां ये संपूर्ण स्वस्थ है। तो इस पे शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले बात कर रहे हैं एजुकेटर्स के वेलबींग की। जो शिक्षक है, शिक्षक का संपूर्ण स्वास्थ्य, दुनिया में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता हो तो बहुत ज्यादा फर्क इतना शायद ना पड़े, लेकिन एक शिक्षक का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो एक पीढ़ी का स्वास्थ्य बिगड़ता है, एक समाज का स्वास्थ्य बिगड़ता है और कहीं ना कहीं आगे जाकर के एक देश का स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो आज एक शिक्षक के संपूर्ण स्वास्थ्य पे आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए बहुत सारे डायमेंशंस हैं होलिस्टिक वेलबींग के, क्या क्या। फिजिकल वेलबींग एक बात है, सभी लोग जानते हैं स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा इमोशनल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, कब हंसना है, कितना हंसना है, कब रोना है या रोना ही नहीं है, इन चीजों पर हमारे अपने इमोशंस पे हमारा कंट्रोल है। और जब हम चाहें प्रेजेंट पे रहना तो प्रेजेंट पे रहें, और जब भविष्य में जाना चाहें तो भविष्य पे जाएं। हमारे थॉट्स अपने आप से चले जाएं तो इमोशनल कंट्रोल नहीं है। तो इस पे इमोशनल वेलबींग पे थोड़ा सा बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल वेलबींग पे करेंगे, स्पिरिचुअल, सोशल, एनवायरमेंटल, डिजिटल और फाइनेंशियल, इन 8 तरह के स्वास्थ्य के बारे में आज हम अपन बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल वेलबींग, मोटी मोटी बात करें तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा तब माना जाएगा जब हमारी डाइट हेल्दी डाइट हो। अब हेल्दी डाइट में और सारी चीजों पे बात नहीं करेंगे, न्यूट्रिशन और डाइट पे शायद आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पर एक स्वास्थ्य में 3 बातें विशेष रूप से आती है डाइट के अंदर। हमारा भोजन सतो प्रधान है, रजो प्रधान है, तमो प्रधान है। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। सतो प्रधान भोजन है तो वो विचारों को, सतो प्रधान विचारों को जन्म देगा, रजो प्रधान भोजन है तो विचारों की क्वालिटी सेकंड ग्रेड होगी, और तमो प्रधान भोजन है तो फिर विचारों की क्वालिटी और डिग्रेड हो जाएगी। मोटा मोटी देखा जाए तो लोग मान लेते हैं कि चलो हमने वेजिटेरियन खा लिया, अच्छी बात है, हमारा भोजन किसी को दुख देकर के प्राप्त नहीं होना चाहिए, पहला सिद्धांत। किसी हिंसा से और किसी को दुख देकर के यदि प्राप्त हुआ भोजन है वो जीवन में दुख का ही निर्माण करेगा, ठीक है, समझ लिया, दुख दे करके नहीं आया। उसके बाद हमारा भोजन, इतने एक व्यक्ति का यदि एक टाइम के भोजन की बात करें तो शायद 1000 लोग कम से कम एक व्यक्ति के एक भोजन में इन्वॉल्व होते हैं। जो ग्रेन प्रोड्यूस हुआ, कटा, फैक्ट्रीज तक पहुंचा, कुछ प्रोसेस हुआ, मसाले बने इतने तरह के, और लास्ट में आपके भोजन में जो प्लेट में थाली में आया, एक व्यक्ति के भोजन में 1000 लोग इन्वॉल्व होते हैं। और उन 1000 लोगों में चेन में उसको बनाते वक्त कोई एक भी व्यक्ति यदि दुखी हुआ तो उसका इफेक्ट भोजन में चला गया। अब सारे इतने सारे इफेक्ट से ग्रसित यदि वो भोजन है तो क्या वो तरीका हो कि हम उस भोजन के उस इफेक्ट्स को नलीफाई करके एक बेहतरीन भोजन का निर्माण कर सके। तो ब्रह्मा कुमारीज में कुछ विशेष दो बातें बताई जाती हैं कि जो आपका भोजन है, भोजन बनाने का एक विशेष प्रोसेस होता है। कई लोग पूछते हैं कि क्यों आप मना करते हो, बाहर का क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि 1000 लोगों ने भोजन बनाया और उसके बाद 1000 भोजन लोगों के बनने से भोजन का निर्माण हुआ और फिर लास्ट में जो बन के आया आपने बाहर खाया। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने घर में भोजन बनाता है तो ही और शी ऑफर्स दिस फूड टू द अलमाइटी, उस ईश्वर को समर्पित करके, ताकि वो भोजन प्रसाद बन जाए। भोजन तो प्रसाद ही था, लेकिन उसने 1000 लोग जिनको बनाने में लगे हुए थे उनमें किसी के यदि गलत थॉट, कहीं से किसी को पैसा कम मिला, कुछ भी बात हुई, उसका प्रभाव उस भोजन पे आया। और उस भोजन को नलीफाई करने का, इफेक्ट को नलीफाई करने का तरीका है ऑफर्स दिस फूड टू द ऑलमाइटी, ईश्वरीय याद में बना हुआ भोजन होना चाहिए। और आप सबको पता हो ब्रह्मा कुमारीज में जो बनाने वाले लोग हैं पवित्र विचारों के साथ, पवित्र उद्देश्यों के साथ ये भोजन बनाते हैं, इसलिए ये भोजन सत्वप्रधान भोजन होता है। क्लियर है? बहुत बहुत जरूरी है कि भोजन हम कहां, फॉर एग्जाम्पल, हम बाहर खड़े होकर, सड़क पे खड़े होकर चाट गोलगप्पे आदि खा रहे हैं, उनका भोजन बनाने का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? खूब खाओ खूब कमाए, खूब खाओ खूब कमाए, तो उसकी तरफ से थॉट्स क्या जा रहे हैं, और खाओ और खाओ और खाओ। आपकी तरफ से क्या आ रहा है थॉट मनी मन में, थोड़ा सा और लेते हैं, थोड़ा सा और लेते हैं, थोड़ा सा और लेते हैं। जो थॉट्स फूड में चले गए वैसे ही थॉट्स वो जनरेट करने लगते हैं। उस थॉट्स फूड के पीछे थॉट्स है टू मेक मनी, पैसा आए पैसा आए, और उस भोजन को खाने के बाद मुझे लगेगा चलो थोड़ा सा शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर देता हूं। बार बार वही थॉट चल रहा है, अच्छा चलो इधर पैसे को इधर लगा देते हैं, इसको ये कर लेते हैं, उसको वो कर लेते हैं, क्योंकि हमने फूड ही वही लिया था। हेल्दी डाइट, दूसरी चीज हेल्दी स्लीप, कब सोना है कितना सोना है। हेल्दी स्लीप तब है बिस्तर पे गए 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में आपको नींद आ जाती है तो आपकी नींद हेल्दी है, लेकिन बिस्तर पर जाने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा नींद नहीं आ रही है तो हमारी स्लीप हेल्दी नहीं है, हम स्वस्थ नहीं कहे जाएंगे उस केस में। आज एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, हम लोग कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, हम भी, आप लोग भी पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल्स में हम रहते हैं तो देखा है हॉस्टल्स में लोग बच्चे 2-3 बजे तक जाग रहे हैं रात को, और मोस्टली स्टूडेंट सुबह 8:30 बजे का ब्रेकफास्ट मिस करते हैं। मतलब 60-70% बच्चे सुबह 8:30 बजे का हॉस्टल्स के अंदर ब्रेकफास्ट मिस कर रहे हैं। कारण क्या? और क्लास में कैसे पहुंचते हैं? हमारे यहां पर एक राजयोग थॉट लेबोरेटरी है कॉलेज के अंदर, और उस थॉट लेबोरेटरी में एक बार हमारे पास पहले पहले कुछ बच्चों ने रजिस्टर किया, हमने उनको बताया ऐसा ऐसा नियम कायदा है कि आप आएंगे, आना ये करना है। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है, स्टूडेंट ने, सर यहां आएंगे तो रोज नहाना पड़ेगा क्या? मतलब आश्चर्य ये हुआ हमें सोच के कि हमने अपनी टू डू लिस्ट में ये और लिखना पड़ेगा कि आपको नहा के आना पड़ेगा। यदि हम इंजीनियरिंग में ये चीज पढ़ा रहे हैं, ये चीज बताना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम में पीछे बहुत सारी चीजें बातें थी जो छूट गई थी, उन्हें पूरा करना है। एजुकेटर्स हेल्दी तब माना जाएगा उसको खुद को टीम टाइम पे नींद आए, वो 10 बजे सोए, ब्रह्मा बाबा कहते थे 10 माने बस, वो टाइम पे सोएगा तब तो स्टूडेंट टाइम पे सोएंगे, स्टूडेंट को वो शिक्षाएं हम तब तो दे पाएंगे। हम खुद 4 नहीं सही 5 बजे उठते होंगे तब तो दुनिया को कह पाएंगे कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, हम खुद 7, 7.5, 8 बजे उठेंगे तो फिर कैसे। एक बात है, भले एग्जाम्पल के रूप में आप उसे भले समझने की कोशिश करना उसके पीछे के मैसेज को, हमारे यहां पे बड़े मजाक मजाक में एक बात कही जाती है, 2 बजे उठे वो राजयोगी, 3 बजे उठे वो महायोगी, 4 बजे उठे वो योगी, 5 बजे उठे वो भक्त, 6 बजे उठे वो गृहस्थी, 7 बजे रोगी, 8 बजे महारोगी। अब जब मैंने अपनी क्लास में किसी बच्चों से बात शेयर की तो क्या जवाब आया पता है? सर उसके बाद हमारी तो गिनतियां खत्म हो गई थी। तो कहने की बात है, हमारा उठना सोना, नींद का स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा खजाना है। और आखिरी बात भले ये भी यहां कहने की नहीं, क्योंकि सब लोग इससे फ्री होंगे ही होंगे, लेकिन अब हम जिस युग और जिस स्थान पर जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, अवॉइड एल्कोहल सिगरेट, छोटी सी बात है, यहां पे ज्यादातर लोग भले उससे ग्रसित नहीं है, लेकिन अवॉइड एल्कोहल सिगरेट को तो चलो छोड़ दें, मान लें, लेकिन आजकल देश के 3-3, 4-4 बड़े बड़े नामी ग्रामी एक्टर्स एक 3 रुपए के गुटखा का ऐड करते मिलते हैं, तो लगता है कि हमारा वैल्यू सिस्टम कहां चला गया। मतलब ये बीमारी बहुतों में है, इस बीमारी यदि हम में से भी किसी में बीमारी है तो आज एक फिर पावन भूमि पर आए हो, यहीं पर छोड़ के जाना, एक प्रतिज्ञा पत्र लिख के जाना, या एक मेडिटेशन रूम है और माना जाता है कि इस मेडिटेशन रूम में जो प्रतिज्ञाएं करते हैं उनकी प्रतिज्ञाएं फलीभूत होती हैं, आप भी जाके एक छोटा सा पत्र जरूर लिखना। आप सोचिए, एक विजुलाइज कीजिए, क्या सीन लगता होगा कि ये भारत कभी देवभूमि थी, 33 करोड़ देवताएं यहां के इंसान माने जाते थे, और सोचो सामने से लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं, हाथ में 2 रुपए की गुटखा का पुड़िया का पैकेट और यूं करके खा रहे। आप विजुलाइज कर सकते हो? सीन भी विजुलाइज होगा क्या आपसे? सीन ही विजुलाइज नहीं होता कि ऐसा हो भी सकता है क्या। सीन विजुलाइज कीजिए कि लक्ष्मी नारायण जा रहे हैं और एक ठेले पे जरा उसको बोल रहे हैं कि यार 2 और पानी पूरी देना। हम उस देवीय कुल की संतान हैं तो हमारा भोजन भी उसी लेवल का होना चाहिए, और हम कर पाएंगे तब हम अपने स्टूडेंट्स को ये मैसेज दे पाएंगे, तब हम फिजिकली हेल्दी कहला पाएंगे, तब हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में होंगे, क्योंकि सब कुछ मिक्स तो करके दे दिया खाना खिलाने वाले ने, उसमें थॉट्स के अंदर सब कुछ मिक्स करके दे दिया, वो गलत थॉट्स आ रहे हैं, ये थॉट्स आ रहे हैं, उस भोजन में मिक्स करके हमको खिला चुके हैं, ऑलरेडी थॉट्स तो आएंगे। नेक्स्ट प्लीज। यदि फिजिकल वेलबींग है तो अगली वेलबींग पे एक्सरसाइजेस, जिसमें बहुत जरूरी पार्ट है, कम से कम 15 मिनट, आपकी उम्र 60 साल की है तो भी 15 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें, और यदि यंग एज है तो जरूर आपको 60 मिनट 1 घंटा एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, जीवन के आखिरी मुकाम तक ये शरीर जरूर साथ देगा यदि हमने निरंतर इसको स्वस्थ रहने के लिए कुछ इनपुट दिया होगा तो। नेक्स्ट प्लीज। इमोशनल वेलबींग, 2 वर्ड आते हैं, एक है माइंडफुल और एक है माइंडफुल। माइंडफुल आप देख रहे हो, एक छोटा बच्चा है, एक उनके पिताजी हैं, साथ में जा रहे हैं, बच्चे को वो दिख रहा है जो सामने दृश्य है, वो सूरज, वो चांद, वो पहाड़, वो सितारे सब दिखाई दे रहा है, पर पिताजी को क्या दिख रहा है? पिताजी को कुछ और नजर आ रहा है, कल की मीटिंग में ये होगा, कंप्यूटर से ये करना है। हम भी यदि जरूरत से ज्यादा पास्ट में और जरूरत से ज्यादा फ्यूचर में घूम रहे हैं तो वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएंगे, और इसीलिए कहा जाएगा फिर हमारा इमोशनल स्वास्थ्य, इमोशनल वेलबींग अच्छा नहीं है। यदि हम वर्तमान जीवन का आनंद ले पाते हैं तो हमारा इमोशनल वेलबींग बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्लीज। ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत अच्छी बात बताई जाती है इमोशनल वेलबींग के लिए, एंड दैट इज सोल कॉन्शियस। आज शायद सुबह लेसन भी रहा होगा सोल कॉन्शियसनेस पे, सोल पे था लेसन आज का, किस पे था टॉपिक? सोल पे आपने सुना था। इमोशनल वेलबींग का इससे बढ़िया कोई आंसर ही नहीं है, इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, एक दूसरे को खुद भी आत्मा समझें, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते आत्मा आत्मा आत्मा। जिनको ये अभ्यास आ गया वो कर्मयोगी हो गए, वो राजयोगी हो गए, और जो राजयोगी और कर्मयोगी हो गए तो फिर एक्सीलेंस इन कर्म ऑटोमेटिकली आता है। आप सोचिए, एक ऑटोमेटिक गिफ्ट है, यदि मैंने अपने आप को आत्मा समझा तो नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, जॉय, ब्लिस और पावर, ये 7 खजाने ऑटोमेटिकली मिलते हैं जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सोल की तरफ बढ़ता है। और जैसे जैसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बॉडी की तरफ जाता है तो भी पांच गिफ्ट है और वो भी ऑटोमेटिक है, लस्ट, ग्रीड, एंगर, अटैचमेंट, ईगो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभी आना ही आना है, बॉडी देखेंगे, बॉडी सोचेंगे। तो आप इस ब्रह्मा कुमारी सेशन में तीन दिन के लिए आए जी, एक बात भी ले गए आप इन तीन दिन में, सिर्फ ये एक बात ले गए कि हमें सोल कॉन्शियसनेस, हमारे सोचने का लेवल कॉन्शियसनेस का लेवल आगे से सोल रहेगा। तो आपने समझना यहां आने के जितने पैसे खर्च किए उससे लाखों गुना पाया है, सिर्फ ये एक बात लेकर के गए। तो नेक्स्ट प्लीज, इंटेलेक्चुअल वेल बीइंग। सुबह से शाम तक काम करते करते शाम को तीन चार बजते बजते यदि ये लगने लगे कि माइंड बर्नआउट हो चुका, सब कुछ जल के खत्म हो गया, कि क्या बात रहती है, जनरली लोग बात करते हैं अच्छा यार ये नया टॉपिक है कल से शुरू करेंगे, यार आज तो माइंड बर्नआउट हो गया। यदि हम काम करते करते तीन चार बजे बर्नआउट हो रहे हैं मतलब इंटेलेक्चुअल वेलबींग ठीक नहीं है। यहां स्किल की बात नहीं है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स आप में सब में बहुत हैं ही, अपने अपने क्षेत्र के विधाओं के पारंगत आप लोग हैं ही हैं, लेकिन हम इंटेलेक्चुअल वेलबींग तब कहलाएंगे सुबह से शाम तक, शाम पड़े भी रात को 8 बजे भी कोई वर्क हमारे पास इंटेलेक्चुअली आ गया और आप तब भी आप पूरा उसी हिम्मत से कर पा रहे हैं, उसी उमंग उत्साह के कर्फ से कर पा रहे हैं, तो इंटेलेक्चुअली वेलबींग है। माइंड एक्टिव शाम तक रहे, पूरे दिन तक रहे, इसके लिए भी ब्रह्मा कुमारी में एक बहुत खूबसूरत प्रैक्टिस करवाई जाती है। नेक्स्ट प्लीज, एक खूबसूरत प्रैक्टिस है यहां पर, आप में से कईयों ने देखी भी होगी, सुनी भी होगी, ध्यान गया भी होगा ट्रैफिक कंट्रोल का। सुबह से लेकर रात को 9 टाइम्स यहां पर ट्रैफिक कंट्रोल का एक गीत बजता है। उस ट्रैफिक कंट्रोल के गीत में आप देखा होगा ज्यादातर 5 मिनट के लिए सब लोग जहां हैं स्थिर है वहीं खड़े हो जाते हैं और 3 मिनट के लिए जो भी बर्नआउट हुए थे उसको वापस रिचार्ज कर लेते हैं। तो 3 मिनट रिचार्ज की विधि, आपको 3 मिनट भी ज्यादा लगते हो अपने अपने स्थान पर जहां भी जाएं, आजकल ये वॉच में मोबाइल में इस तरह के आप सेटिंग कर सकते हो कि हर एक घंटे में 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए एक म्यूजिक सा बज रहा है, आप जहां बैठे हैं वहां शांत होकर के बैठ जाएं और फिर से ये सोचें कि आई एम ए सोल। अपने आप को सुप्रीम से कनेक्ट करने का तरीका कल के सेशन में आप सीखेंगे, इंपॉर्टेंट सेशन है, मिस मत कीजिएगा। उस सेशन में जब आप सीखेंगे कैसे आप बीच बीच में अपने आप को ऑलमाइटी से कनेक्ट करके रिचार्ज कर लेते हैं तब कहेंगे इंटेलेक्चुअल वेलबींग। नेक्स्ट प्लीज, स्पिरिचुअल वेलबींग। यदि हमारा खुद का एक पर्सनल वैल्यू सिस्टम है और हम उस वैल्यू सिस्टम को लेकर के डिटरमाइंड हैं तो हम स्पिरिचुअली वेल हैं। अपने वैल्यू सिस्टम को लेकर के डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चय के साथ उस पर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग कहलाएंगे स्पिरिचुअली वेल। हमारे पास जीवन को जीने का एक उद्देश्य है। ज्यादातर लोगों से आज बात करें तो उनके पास पर्पस ऑफ लाइफ मिलता है लेकिन वो प्रोफेशनल पर्पस ऑफ लाइफ मिलता है, पर्सनल पर्पस ऑफ लाइफ मिसिंग है। आप समझ पा रहे हैं क्या है? प्रोफेशनल में तो आपने पर्पस बना रखा है कि अपने अगले 3 साल में क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि अगले 1 साल में ये करना है, 3 साल में करना है, 5 साल में करना है, 6 साल में करना है, एक विजन और मिशन नैक के अंदर एनबीए के अंदर जरूरी हो गया तो सबने विजन मिशन डॉक्यूमेंट लगा भी रखे हैं, याद भी कर रखे हैं अच्छे से। लेकिन मेरे खुद के अपने पर्सनल लाइफ का विजन क्या है, मिशन क्या है, यदि ये पक्का पता नहीं है तो स्पिरिचुअली वेलबींग नहीं है हमारा। और ब्रह्मा कुमारीज में पहले 7 दिन के अंदर एक जो 7 डेज कोर्स कराया जाता है उस 7 डेज कोर्स में सबसे पहले ही 7वां चैप्टर यही होता है, जीवन का हमारा ये विजन है और ये हमारे जीवन का मिशन है, पर्पस ऑफ लाइफ पता लगता है। नेक्स्ट प्लीज, यदि हमें स्पिरिचुअली वेलबींग होना है तो इसका एक खूबसूरत तरीका है और वो ये कि प्रतिदिन आधा घंटा आप स्पिरिचुअलिटी को डिवोट करो। हम ये नहीं कह रहे आप ब्रह्मा कुमारी इसको डिवोट करो, आज जिस भी मीन से कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, मेडिटेशन डेली आधा घंटा आप करो। और केवल मेडिटेशन भी तब नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेडिटेशन को चाहिए थॉट्स का फ्यूल और थॉट्स का फ्यूल के लिए कुछ मैटर चाहिए जो आपको डेली आप पढ़ रहे हो। तो डेली आधा घंटा कुछ स्पिरिचुअल इनकल्केशन अंदर जाना चाहिए। आपके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भारत के अंदर हर जगह कम से कम 10-20-50 सेंटर जरूर मिलेंगे मेडिटेशन के, कहीं ना कहीं आप ज्वाइन कीजिए, सीखिए, थोड़ा समझिए, आपको देखना एक महीने डेढ़ महीने में तो जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लग जाएंगे, लोग कहेंगे क्या आप वही हो। नेक्स्ट प्लीज, सोशल वेलबींग। हम सामाजिक रूप से स्वस्थ कब माने जाएंगे? कई बार हम इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्या होता है जब हमें टीम में डाल देते हैं तब गड़बड़ हो जाती है। यदि हम पांच लोगों की टीम के साथ भी उसी बेहतरीन क्वालिटी से परफॉर्म कर सके तो हम सोशली वेल हैं। दो बातें हैं, ग्रुप में काम करना आना चाहिए पर ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए। सोशल वेल बीइंग तब कहलाएगा, हम सामाजिक रूप से स्वस्थ तब कहलाए पाएंगे, नहीं तो फिर क्या होता है इन जनरल, अरे वो एग्जामिनेशन में ड्यूटी लग रही है ना मेरी, उसके साथ लगाना, ये प्रोजेक्ट चल रहा है ना, इस प्रोजेक्ट में मेरे को, हम चार लोग काम कर लेंगे, सब्जेक्ट मेरे को दिया है ये वाला ना, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, अरे वो डीएसए उनको दिया है तो मेरे को भी ये वाला सब्जेक्ट चाहिए। ग्रुप में कंफर्टेबल फील करते हैं, इंडिविजुअल कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन कहीं भी हो वो कंफर्टेबल फील नहीं करते तो सोशली वेलबींग नहीं है। ग्रुप में काम करना आना चाहिए पर ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए, तब हम सोशली वेलबींग है। हमारे रिश्ते हमारे कलीग्स के साथ बेहतरीन होने चाहिए। एक आप में से बहुत लोग हैं जो बड़ी टीम आप लोग भी हैंडल करते होंगे, हमारे पास भी एक 50-60 लोगों की टीम है काम करती है साथ में, पुरानी बात आपको बता रहे हैं। तो हमारा एक सिद्धांत था उसमें, नाराज आप हो जाओ मनाने हम आएंगे, नाराज आप हो जाओ क्योंकि आपका राइट है ना, कोई नाराज किसी से क्यों होता है? किसी से इसलिए नाराज होता है क्योंकि आपको अपना मानता है, नाराज होना आपका अधिकार है, मनाने हम आएंगे। हमारे जीवन में एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे हमारी बातचीत ना होती हो, एक ऐसा व्यक्ति नहीं है कि नहीं इससे हमारी बातचीत नहीं है, बोलचाल नहीं है, जाके जिससे भी बात करनी, क्योंकि यदि टीम लीडर किसी से बातचीत करना बंद कर देगा तो ग्रुपिज्म होना पक्का है, और जब ग्रुपिज्म हो जाएगा तो पक्का मानिए सोशली वेलबींग की तो धज्जियां उड़ गई। तो हमारा सोशल स्वास्थ्य इस पर निर्भर करेगा। पार्टिसिपेटिंग इन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कोशिश करिए कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स कुछ मिल करके, तीन लोग, पांच लोग, दस लोग मिल करके कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए, ये ग्रुपिज्म नहीं है, एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स पे काम। इंडिविजुअल तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव में भी अच्छा काम कर रहे हैं, पर ग्रुपिज्म नहीं है। एंगेजिंग इन सोशल एक्टिविटीज एक और बड़ी बात है, कुछ न कुछ एक सोशल एक्टिविटीज में जरूर इंगेज रहिए, क्योंकि हमारा जो टीचिंग प्रोफेशन है वो इतना नोबल प्रोफेशन है, दुनिया का और कोई प्रोफेशन आपको ये इतनी आजादी नहीं देता जो टीचिंग प्रोफेशन देता है, कि हम किसी न किसी सोशल एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। बहुत सारे एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक फ्रूटफुल जयपुर करके एक क्लब बनाया 10-20 लोगों ने मिलकर के, पूरे शहर में 2000 पेड़ लगा दिए 2 साल के अंदर। एक क्लब बनाया सोच करके कि बोले क्लीन एंड ग्रीन कैंपस करेंगे, क्लीनलीनेस पे बहुत शानदार काम कर रहे हैं। एक क्लब बनाया जरूरत के नाम से, उस जरूरत के नाम से क्लब में क्या करते हैं, आसपास के स्लम्स एरिया के 250 बच्चों को लेकर के आते हैं शाम को 4 बजे, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा फ्री रहता है, अवेलेबल रहता है, वहीं के स्टूडेंट पढ़ाते हैं, फ्री पढ़ाते हैं, आपका भी कोई खर्चा नहीं आया, लेकिन बैक टू द सोसाइटी कुछ है। और शाम को जब वो लाइन आती है ना, आपको संतोष का अनुभव होता है, जब आप ड्रोन से आप उस लाइन को देखोगे ना, आपको लगभग लगभग 300 मीटर की एक लाइन एक एक स्टूडेंट की आती 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 है, 300 स्टूडेंट की लाइन नजर आती है, और आपको लगता है कि आप 300 स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दे पा रहे हो, दिल को संतोष मिलता है। कुछ न कुछ सोशल एक्टिविटी, गिविंग बैक टू दिस सोसाइटी जरूरी है। एक व्यक्ति जीवन काल के एक साल के अंदर लगभग 7.5 पेड़ों जितनी ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं, यदि हमने कम से कम 7-7.5 पेड़ लगाए तो हमने किसी और के लिए कुछ नहीं किया, केवल अपने जितना किया, इससे ज्यादा कुछ किया तो गिविंग बैक टू द सोसाइटी है। एक क्लब बच्चों ने बनाया आशाएं के नाम से, और उसमें वो ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, एसडीपी आरडीपी डोनेशन का काम करते हैं, ऑन रिक्वेस्ट डोनेशन का काम करते हैं, इतना अच्छा शानदार ग्रुप बना हुआ, अब तक लगभग 17,000-18,000 लोगों को वो ये सेवाएं दे चुके हैं, इतने लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं। तो ये सारे जो कामकाज हैं, ये तो जस्ट हमारे यहां पे जो एक्टिविटी हुई, हमने एक एग्जांपल के रूप में आपको बताया, पर इस तरह कुछ न कुछ सोशल एक्टिविटी में जरूर अपने टीचिंग के अलावा साथ साथ इन चीजों में भी एंगेज रहेंगे तो कहेंगे सोशली वेलबींग है। समाज के लिए कुछ नहीं किया, आपने अपने लिए किया, तो फिर कहीं ना कहीं अंत समय में वो याद आएगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए था, नहीं फिर वो सिकंदर की कहानी याद आएगी। आगे देखते हैं। तो एक जैसे क्लब कुछ एक सुहासिनी नाम से बना हुआ, बच्चे क्या करते हैं, गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ काम कर रहे हैं। देन अभ्युदय में कुछ काम चल रहा है, जरूरत के नाम से, सोच के नाम से, आशाएं के नाम से। ये जस्ट एग्जाम्पल, आपके नाम, आपके यहां भी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। या तो कुछ अपना खड़ा कीजिए नया, नहीं तो कुछ ऑलरेडी खड़ा है तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए। नेक्स्ट प्लीज। एनवायरमेंटल वेलबींग, ये देश, ये पृथ्वी, ये दुनिया एक ही है, और कहीं आकाशीय भूमंडल में कोई दूसरे अंतरिक्ष में कोई दूसरा ग्रह होगा और वहां इंसान होगा, उन कल्पनाओं की तरफ एक बार छोड़ देते हैं बात को। इसी धरती पर रहना है और बहुत लंबे समय तक रहना है, हम रहेंगे, हमारे आगे आने वाली सदियां पीढ़ियां रहेंगी। लेकिन एक SDG गवर्नमेंट बात करती है, UNO वगैरह में जाओ, अंतर्राष्ट्रीय संघ में बात होती है कि SDG भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऐसा विकास हो जो टिकाऊ विकास हो। आज जल हम उपभोग कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़ के जाना चाहिए। वृक्ष हम उपयोग कर रहे हैं, एनवायरमेंट प्रकृति का हम उपभोग कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़ के। मिनरल्स हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इतना और इस तरीके से करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़ करके जाएं। तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतरीन पृथ्वी, बेहतरीन विश्व देश और समाज छोड़ के जाएं, इसके लिए हमें एनवायरमेंट वाली चीजों पर भी कुछ न कुछ, सबका कर्ज है इस पृथ्वी पर, उस कर्ज को अपना, उस कर्ज का उजूरा चुकाना है, उस कर्ज का हमें रिटर्न करना है। नेक्स्ट प्लीज। हम ब्रह्मा कुमारीज में कल्प करू के नाम से बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट चला पिछले साल, और संख्या मुझे पता नहीं, लेकिन लाखों के अंदाज में इन्होंने पूरे देश भर में पेड़ लगाए। आप भी कोई इस तरह के इनिशिएटिव या तो खुद पैदा करो या किसी इनिशिएटिव के साथ जरूर जुड़ो। नेक्स्ट प्लीज। डिजिटल वेलबींग, ये आज के जमाने में एक अच्छा स्वास्थ्य, डिजिटली हम स्वस्थ कब कहे जाएंगे? अच्छे अच्छे डिजिटल्स एप्पल का आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिजिटली स्वस्थ नहीं कहे जाएंगे। डिजिटली स्वस्थ मतलब फोन मेरा है, मोबाइल मेरा है, मैं मोबाइल का नहीं। यदि हम अपने रिश्तों के ऊपर मोबाइल को तरजीह देने लगते हैं तो हम डिजिटली वेलबींग नहीं कहे जाएंगे। पांच लोग घर में बैठे हैं, मैं अपने मोबाइल पे व्यस्त हूं, तो हम डिजिटली वेल नहीं कहे जाएंगे। सोशल मीडिया में हमारा जरूरत से ज्यादा समय गुजरता है, सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज लगा करके पोस्ट डाल के डालते हैं और हजारों अच्छे कमेंट आते हैं, वाह वाह वाह, लेकिन घर वालों के कमेंट आह 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 के हैं, तो इसका मतलब हम डिजिटली वेल बींग नहीं है। फोन कॉल्स टाइम मतलब बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पूरे दिन में आपने एक घंटा यूज किया तो चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन हमने देखा है ऐसा, अपने स्टूडेंट्स को देखा है, पूरे दिन में चार चार पांच पांच छह छह घंटा भी टाइम वेस्ट सोशल मीडिया पे, फोन कॉल्स पे कर रहे हैं। हम शिक्षक हैं, उन लोगों के सामने एक आदर्श है, हमें कुछ अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ेगा, और सेल्फ कंट्रोल लाने का तरीका स्पिरिचुअल वेलबींग से निकलता है। स्पिरिचुअल वेलबींग नहीं है तो बाकी की सारी वेलबींग खत्म है, क्योंकि स्पिरिचुअल वेलबींग हमें डिटर्मिनेशन देता है, अंदर से दृढ़ता देता है। दृढ़ता नहीं होती तो हम काम शुरू करते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन होता नहीं। नेक्स्ट प्लीज। फाइनेंशियल वेलबींग, जो धन हमारे घर में आ रहा है, हार्ड एंड अर्न मनी है, मेहनत से आपने कमाया है, ज्यादातर शिक्षकों के साथ तो ये बात नहीं है, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को हमें ये मैसेज देना है कि जो धन आ रहा है वो धन सही मींस से आपके पास आया हो। नहीं तो देखो, आज एक मींस तो आप सबका, शिक्षक कम्युनिटी यहां बैठी है, मींस सही मींस से ही आपके पास धन आ रहा है, उल्टे सीधे मींस से शिक्षकों के पास जनरली धन कम ही आता है। परंतु क्या हमें फाइनेंशियली वेलबींग तब कहेंगे जब हमें उसका खर्च करने का तरीका भी ठीक हो। दोनों तरफ, ये भी एक दुधारी तलवार है, या तो दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे कमाना आता है खर्च करना नहीं आता, या खर्च करते ही नहीं है, खूब 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 कमा के रख लिया और खर्च करने का तरीका नहीं है, फाइनेंशियल वेलबींग नहीं है। इतना सा कमाया और इतना खर्च कर रहे हैं वो भी फाइनेंशियल वेलबींग नहीं चाहिए, नहीं है। जेब के अंदर पॉकेट खोलो, तो 10-20 क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे, एक से पेमेंट किया फिर दूसरे में डाला, दूसरे से किया तीसरे में डाला, तीसरे से किया चौथे में डाला। फाइनेंशियल वेलबींग नहीं है। धन कमाना भी आना चाहिए और इस धन से अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना भी आना चाहिए। दोनों आर्ट है, कमाने का आर्ट बहुतों में है, खर्च करने का आर्ट बहुत कम लोगों में पाया जाता है, ठीक से खर्च करने का आर्ट। नेक्स्ट प्लीज। इन कंक्लूजन कहें तो ये इतने सारे वेलबींग पे जब हम बात करते हैं, इन सारे वेलबींग का आधार स्पिरिचुअल वेलबींग है। यदि स्पिरिचुअल वेलबींग शानदार है तो बाकी के सभी वेलबींग धीरे धीरे आ जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल वेलबींग डिटर्मिनेशन ऑफ माइंड देता है, दृढ़ निश्चय देता है, अंदर से दृढ़ता देता है, तो बाकी सारी चीजें वेलबींग में आ जाती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात कर रहे हैं कैसे पता लगे, अभी तक हमने वेलबींग की बात की थी, चलो अब हमने मान लीजिए सातों आठों जो वेलबींग पे बात की, बहुत अच्छी वेलबींग है, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, समझ में आ गया। पर अगली जो ये आठ बातें हैं, यदि ये जीवन में हैं, ये इस बात का उदाहरण है कि वास्तव में हमारा स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही आठ शक्तियां भी मिलती हैं। अच्छे स्वास्थ्य से कौन सी आठ शक्तियां मिलती हैं, उन पे आते हैं। सबसे पहला है एक टीचर का, एक एजुकेटर का उसके अंदर चाहिए पावर टू टॉलरेट, मस्ट है। यदि वो आठों चीजें वो फॉलो करता होगा, स्पिरिचुअली वेलबींग होगा, सारी चीजें होंगी, तो उसमें पावर ऑफ टॉलरेंस जरूर होगी। कुछ भी परिस्थिति होगी, क्लास में ब्लास्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट प्लीज। उसमें पावर टू अकोमोडेट होगी। आपकी क्लास में निश्चित रूप से एक स्टूडेंट ऐसा भी मिलेगा जो रॉकेट पे बैठा है और दूसरा बैलगाड़ी पे बैठा हुआ भी मिलेगा, पर उसमें पावर ऑफ अकोमोडेशन है, वो दोनों को साथ रख के चलने की कला जानता है टीचर। यदि हमारे अंदर पावर ऑफ अकोमोडेशन मिलेगा जब हम स्पिरिचुअली वेलबींग होंगे। नेक्स्ट प्लीज। पावर टू डिस्क्रिमिनेट। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअली वेलबींग है इसका मतलब कोई भी आए और उल्लू बना जाए, परखने की कला भी होगी, परखने के साथ साथ निर्णय शक्ति भी हमारी बेहतरीन होगी, पावर ऑफ जजमेंट। वो व्यक्ति बेहतरीन निर्णय ले पाएगा अपने जीवन में भी। नेक्स्ट प्लीज। पावर ऑफ जजमेंट के बाद पावर टू फेस। बहुत बहुत जरूरी आर्ट है ये, हम भी सीखें अपने साथ में, अपने साथियों को, अपने स्टूडेंट्स को सिखाना बहुत जरूरी है। बहुत मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आपके जीवन में, किसी के जीवन में ऐसी अनहोनी होनी कोई दुर्घटना घट जाए, नहीं होनी चाहिए थी, हो जाए, किसी ने शरीर छोड़ दिया, एक महीने तक किसी को दुख होता है, एक स्वाभाविक सी बात हो सकती है। पर ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जीवन में, दो दो साल, पांच पांच साल, दस दस साल तक उन घटनाओं को भूल ही नहीं पाते हैं, उन्हीं पास की घटनाओं में जी रहे हैं। इसका मतलब वेलबींग नहीं है। और पावर टू फेस बहुत बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहे कि इसके बिना काम चला लेंगे, पर होता उल्टा है। फेस और टॉलरेट दो पावर है, जहां फेस करना चाहिए वहां टॉलरेट कर लेते हैं, जहां टॉलरेट करना चाहिए वहां फेस कर लेते हैं। बात इशारों में कही है, आप लोग समझदार हैं। पावर टू फेस के बाद नेक्स्ट इज पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति। जिस व्यक्ति संपूर्ण स्वास्थ्य होगा वो सबके साथ, सहयोग में भी दो बातें हैं, सहयोग लेना और सहयोग देना। बहुत लोग हैं सहयोग देना अच्छा जानते हैं, पर जब सहयोग लेने की बात आती है तो कहीं ना कहीं अंदर ईगोइज्म क्लैश करता है, नहीं मैं क्यों लूं, मैं क्यों मांगू, अपने खुद में लगे रहते हैं, और जिस काम को दो घंटे में पूरा होना चाहिए 20 दिन लगा देंगे। मैं कोऑपरेट, मैं किसी से सहयोग क्यों मांगू। तो लेना और देना दोनों आर्ट है, दोनों आर्ट चाहिए। पावर टू विड्रॉ करना। घर में थे, अचानक किसी से मान लीजिए आपकी बहस हो गई, बातचीत हो गई, या रास्ते में गाड़ी से आ रहे थे, कुछ हुआ, छोटा मोटा बहस हो गई, बातचीत हो गई, बातचीत और ज्यादा बढ़ गई थी, अचानक चलो अब जो भी हुआ, आप पहुंचे कॉलेज, आपका सुबह 8:30 बजे लेक्चर है, क्या क्या करना पड़ेगा उस वक्त। क्लास के अंदर गए, एक तो तरीका है कि जो सारा बर्डन लेके आए थे वो बर्डन उठा करके स्टूडेंट्स पे डाल दिया, और एक है पावर टू विथड्रॉ, अपने आप को आसपास की परिस्थितियों से निकाल के समेट लेना, विथड्रॉ कर लेना। जैसे एक कछुए का एग्जांपल बेहतरीन आता है, कछुआ क्या करता है, अपने चारों हाथ पांव की जरूरत होती है तो बाहर रखता है, जब जरूरत नहीं होती अंदर कर लेता है। तुरंत क्लास 8:30 शुरू हुई, क्लास में किसी को पता भी नहीं चलेगा इनके साथ 10 मिनट पहले ऐसी बड़ी घटना हुई है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, देश के कई ऐसे राष्ट्रपति हैं उनके घर में डेथ हुई है, 15 अगस्त को झंडा फहराना था, 26 जनवरी को कुछ करना था, वो पहुंचे राइट टाइम पे, फ्लैग होस्टिंग की है और बाद में जाके उन्होंने क्रिमेशन किया है। ऐसे एग्जांपल है, ऐसे कहते हैं, विड्रॉ किया आपने आपको, उन सारे थॉट्स से विड्रॉ करके अपनी जिम्मेवारियों को पूरा किया। नेक्स्ट, पावर टू पैकअप। पैकअप मतलब स्टॉप। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, स्टॉप मतलब स्टॉप। बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स जीवन में आ रही है, स्टॉप। जिनमें होलिस्टिक वेलबींग होगा, जिनके पास 8 तरह का वो वेलबींग होगा, उनके पास ये 8 शक्तियां भी होंगी। तो ये हुई टोटली होलिस्टिक वेलबींग की कहानी और होलिस्टिक वेलबींग से होने मिलने वाले 8 फायदे, 8 बेनिफिट्स। 8 तरह का वेलबींग, 8 तरह के मिलने वाले बेनिफिट्स। तो लास्ट में 2 मिनट के लिए सब लोग सीधे बैठ जाएं एकदम, और एक सॉन्ग कोई भी चलेगा, हम 2 मिनट मेडिटेट करके अपने सत्र को यहां समाप्त करेंगे। ओम शांति।